संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। समय सार के पाठक की और मोक्ष मार्ग प्रकाशक के पाठक की एक ही समस्या है कि वो नए विभाग से परिचित नहीं है, वो अपेक्षाओं को नहीं समझता है। जितने भी प्रश्न होते हैं वो सब अपेक्षाओं को नहीं समझने के कारण होते हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में हम देखते हैं कि जितने आगम प्रमाण हैं वो सब शिष्य के मुख में डाले हैं और जितने उत्तर हैं वो टोडरमल जी ने नए विभाग की अपेक्षाओं को समझा करके दिए हैं। उससे ऐसा लगता है ना, टोडरमल जी का जो प्रश्न करता है, श्रोता है, शंकाकार है, वो भी स्वाध्यायी है। ऐसा नहीं है कि यहां वहां के प्रश्न नहीं करता है। समय सार में भी आप देखो, ये गाथा यही कह रहे ना कि आप तो कह रहे हो कि ये पुद्गल हैं, कौन से रागादि भाव, और ग्रंथांतरों में गोमर्सारादि ग्रंथों में तो इन्हें जीव के कहा है, तो उसने आगम का प्रमाण दे करके और ये शंका प्रस्तुत की और उसका उत्तर यहां पर यही दे रहे हैं कि भाई ये तो व्यवहार से कहा है और हम यहां बात जो कह रहे हैं वो निश्चय की है। पर इतना सा, इतनी सी चर्चा है, लंबी बात नहीं है। देखो 25वीं गाथा में भी यही बात हुई थी कि वो कह रहा था कि यदि तुम देह के आश्रित जो गुण हैं उनके आधार पर स्तुति की गई है उसे निश्चय स्तुति नहीं मानोगे, तो ये सारी जो आचार्यों ने तीर्थंकरों की स्तुति की है वो सब मिथ्या हो जाएगी। तो उनने भी यही जवाब दिया था कि भाई तुम नए विभाग नहीं जानते हो, ये सब व्यवहार में की बात है, निश्चय में से ऐसा नहीं है। तो समय सार में भी आज ही से लेकर अंत तक यही टोन मिलेगी और एक बात ये भी मिलेगी कि जैसे गुणस्थान जीव नहीं है, मागना स्थान जीव नहीं है, जीव स्थान जीव नहीं है, संकलेश स्थान जीव नहीं है, विशुद्धि स्थान जीव नहीं है, ये सब गाथाएं पीछे निकल गई ना 29 प्रकार के भावों में। तो इसका मतलब ये है कि वो उनका तो ऐसा मानते हैं कि हमारा पाठक ये तो समझता ही है कि विशुद्धि स्थान क्या है, संकलेश स्थान क्या है, गुण स्थान क्या है, मागना स्थान क्या है, इतना समझदार पाठक तो है ही है। ये जो हमारे सामने एक प्रॉब्लम आती है कि गुरुदेव के पुण्य प्रताप से ये जो समय सार का स्वाध्याय का क्रम बहुत तेजी से सारे देश में बढ़ा है और वो लोग वो तो जानते नहीं है गुणस्थान क्या है, मांगना स्थान क्या है। और इसमें ये आता है कि गुणस्थान ये नहीं है, मांगना स्थान आत्मा नहीं है, पर आत्मा के जानने से आत्मा का कल्याण होगा और इनमें उलझने से कोई बात नहीं है। तो वो तो जो उसको जान गया है और फिर उसी में उलझता है वो उसके लिए ये बात कही थी। अब इसने जाना ही नहीं है और उसे उलझन मान करके उसे वो देखना ही नहीं चाहता है। जैसे कि समय सार के आगे वो अधिकार आएगा, मोक्ष अधिकार, तो उसमें लिखा है बंध कथा, बंध कथा का निषेध में उन्होंने कह दिया कि इसमें कर्मानुयोग के स्वाध्याय में निरत होकर कर्म की व्यवस्थाओं को जानकर कैसे बंध होता है और कैसे मोक्ष होता है, कौन कौन सी प्रकृतियों का कैसे कैसे, और जो अपने को ये समझने लग गए हैं कि हम धर्मात्मा हो गए ऐसा लिखा है, तो उनका निषेध है, उनके जानने का निषेध नहीं है, क्योंकि वो भगवान आत्मा तो बंध और मोक्ष से रहे थे। तो मेरे कहने का आशय ये है कि ये तो निश्चित है कि बिल्कुल प्राथमिक जिसको जैन दर्शन का सामान्य ज्ञान भी नहीं है, समय सार उसके लिए ज्यादा उपयोगी नहीं हो सकता है, थोड़ा सामान्य ज्ञान उसके लिए होना बहुत जरूरी है। अब इसके आधार पर कुछ लोग समय सार के स्वाध्याय का निषेध करने लग गए और प्रवचन की सभा में तो स्वाध्याय नहीं कराना चाहिए। तो टोडामल जी ने इसके बारे में फिर बहुत प्रश्न उत्तर किए, जवाब दिए कि मूल मुक्ति का मार्ग तो इसमें ही है, यदि इनका पठन पाठन नहीं करेंगे तो हम मूल मार्ग से वंचित हो जाएंगे। ये इस तरह के जवाब देने पड़े। और देखो ये अत्यंत अप्रतिबुद्ध को समझाते हैं, 19वीं गाथा की उत्थानिका में लिखा है, अथवा और हमको ऐसे प्रमाण देना पड़ते हैं कि जिसमें कोई आदमी ये कहे कि ये साधारण श्रोता आगे यहां बैठ गया है तो उसको तो समय सार सुनना नहीं चाहिए। वास्तव में जैन शास्त्रों में ऐसा बंटवारा है नहीं। टोडामल जी ने तो यहां तक लिखा है कि पहले कौन पढ़े और बाद में कौन, नहीं पढ़ने की तो वो बात ही नहीं करते। तो उसने भी कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है, जब जिसमें मन लगे जैसा पढ़े वैसा आप पढ़ो। खुद इस बात को भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। मेरी समझ में नहीं आता है कि शास्त्र स्वाध्याय करने के लिए लिखे गए, अब उसमें से ये भी एक बात चली है कि कब पढ़ना, क्यों, कौन पढ़े और कौन नहीं पढ़े, कब पढ़े और कब नहीं पढ़े, यानी किसी न किसी बहाने से हमने पढ़ने के निषेध के रास्ते निकाल दिए। कभी तो हम कहते हैं कि सामान्य ग्रस्तों के पढ़ने के लिए नहीं है, कभी कहते हैं कि जो पहले ये पढ़ो ये मत पढ़ो ये पढ़ो किसी तरकीब से, और कभी ये कहते हैं कि सुबह शाम अकाल में नहीं पढ़ना चाहिए। अब वो पूजन में भी आता है ना, ज्ञान सम्य ज्ञान की पूजन में, और सासों में आते भी, तो वो तो उन धवलादी ग्रंथों के बारे में है, और खासकर उस जमाने की वो बातें हैं कि जब शास्त्र एक शास्त्र का लिखाना बहुत महंगा काम था, क्योंकि एक आदमी उसे हाथ से ही लिखता था, और वो आदमी इतना योग्य होना चाहिए, क्योंकि उसमें प्रूफ रीडिंग की व्यवस्था नहीं थी कि जो भी लिखे एक दफे में पूरा शुद्ध लिखे, नकल भी करे तो भी। तो ऐसे लोगों का मिलना बहुत कठिन था, और वो होंगे तो उस समय के हिसाब से काफी महंगे होंगे, क्योंकि रेयर होता तो वो महंगे होते ही हैं। एक एक 25-25 पेज की किताब लिखने में उस सब जमाने में 100-100 रुपए खर्च हो जाते थे, और उस जमाने के 100 रुपए आज के 1,00,000 रुपए हैं। तो वो हाथ नहीं लगे, पसीना नहीं लगे, मुंह पे ऐसा लगाओ और फिर पढ़ो, और उसे बांध के कहते शास्त्रों शत्रुओं को एक साथ बांध के रखना चाहिए, है ना, शास्त्रों को शत्रुओं जैसा बांध के रखना चाहिए मजबूती से, ढीले ढाले बांधोगे तो वो टूट फूट जाते थे। और जो अकाल बोलते हैं ना, संध्या काल, तो गाय भैंसें सुबह घर से छूट के जंगल की तरफ जाती हैं, और शाम को जंगल से नगर की तरफ आती हैं, और पहले गांव गांव में वो व्यवस्था थी, अब तो शहर में गाय को घुसने ही नहीं देते हैं। तो उस वक्त धूल बहुत उड़ती थी, उपद्रव के चांस बहुत थे, ग्रस्त लोग उनमें व्यस्त हो जाते थे, उस वक्त पठन पाठन की व्यवस्था संभव नहीं थी। और मुनिराजों के लिए जो है वो सामयिक का काल है, तो सामयिक के काल में स्वाध्याय करोगे तो सामयिक छूट जाएगी, तो सामयिक तो स्वाध्याय से भी बड़ी चीज है ना। तो ऐसी अपेक्षाओं से कहीं मना किया हो, और उसके आधार पर हम शास्त्र को नहीं पढ़ने, हम तो उल्टा कहते हैं कि कब पढ़ो, कि दिन में पढ़ो, रात में पढ़ो, 2 बजे पढ़ो, 1 बजे पढ़ो, जब तुम्हें समय मिले तब पढ़ो। कहां पढ़ो, कि जहां रेल में पढ़ो, बस में पढ़ो, प्लेन में बैठे हो तो प्लेन में पढ़ो, एयरपोर्ट में बैठे हो तो वहां पढ़ो, रेलवे स्टेशन पर बैठे हो तो वहां पढ़ो, क्यों, जहां तुम्हें समय मिले, जैसे तुम्हें समय मिले वैसे इन शास्त्रों का स्वाध्याय करो। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि हमें जो ज्ञान के या शास्त्रों के आधार से बाधाएं निकालते हैं वो आप जैसे पाठकों के लिए नहीं है, पर जैसी किताबें आपके हाथ में हैं और आपको सरलता से उपलब्ध हैं, तो एक चली जाए तो दूसरी मिल सकती है, उन सब परिस्थितियों में स्वाध्याय जितना जब जैसे संभव हो सके अवश्य करना चाहिए। तो अभी ये बात चल रही है कि शिष्य का प्रश्न था ग्रंथांतरों में, तो ये बात लिखी है, तो उसके उत्तर में आचार्य की जो गाथा है अपने कल पढ़ी थी उसका मैं पद्यानुवाद पढ़ता हूँ कि वर्णादि से को व्यवहार से ही कहा जाता जीव के, परमार्थ से ये भाव भी होते नहीं है जीव के। दूध पानी की तरह संबंध इनका जानना उपयोगमय इस जीव के, परमार्थ से ये है नहीं। अब ये गाथा तो सीधी सच्ची बात है कि वर्णादि जो भाव है वो जीव के नहीं है, उन्हें जहां भी शास्त्र में लिखा हो तो समझ लेना कि व्यवहार नय का कथन है। क्यों? इनका जीव के साथ दूध और पानी जैसा संबंध है। ये दूध और पानी का संबंध क्या है ये हमें जरा थोड़ा समझना चाहिए। मैंने ऐसे प्रवचनकारों को सुना है जब ये दूध पानी की तरह संबंध की चर्चा आती है ना, खासकर छेड़ाला में, जल पय जो जिय तन मिला, वो ऐसा समझा रहे थे कि देखो भाई दूध और पानी की मित्रता कितनी बढ़िया है। क्या? जब पानी मिले दूध को, अग्नि पर चढ़ा दिया गया, उसे गर्म करने के लिए जब वो दूध जलने लगा तो पानी ने कहा, भाई साहब आप चिंता मत करो, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक कोई आंच नहीं आने दूंगा आपको, आखिर आपने मुझे ये इज्जत दी है ना, मुझे तो कोई मुखर में भी नहीं लेता था और तुम्हारे साथ मिल गया हूं तो दूध के भाव बिक गया, तो तुम्हारी संगति से मुझे इतनी इज्जत मिली तो मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा लेकिन आपको जलने नहीं दूंगा। जब अपने मित्र पानी को जलते देखा दूध ने, तो दूध को इतना गुस्सा आया कि वो इतनी आंखें फाड़ फाड़ के उठना। कभी दूध को उफनते देखा आपने? उसमें फुग्गे बन जाते हैं ना, आंखें फाड़ फाड़ के देखा आप। क्यों? तो इससे भी सामने वाला नहीं रुका तो तपेली में से उबलकर और दूध आगी को बुझाने के लिए उस पर आक्रमण किया, तो पानी भी बोला, भाई साहब आप अकेले कहां जाते हो, मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो दोनों मिलके उनने अग्नि पे पड़ के अग्नि को बुझा दिया। मित्रता हो तो ऐसी है। अरे भाई ये दूध और पानी की मित्रता बताने का प्रसंग नहीं है, यहां तो जीव और पुद्गल की भिन्नता बताने की बात है, शरीर की और जीव की मित्रता बताने की बात नहीं है। क्या इनके दोनों में के बीच में भेद विज्ञान कराना है? तो उसे तो याद आ गई, कहानी सुनी थी कहीं से, तो अपने उसे ठोकना है। वो हमारी बात के विरुद्ध पड़ेगी कि सीधी पड़ेगी, उसको इसका कुछ भरोसा नहीं है, है? क्या यानी उसको ये उसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं करती है ना। तो ये सीधा सच्चा संबंध तो ये है कि दूध और पानी एक गिलास में हैं, तो वे उनका संबंध गेहूं और कंकड़ जैसा नहीं है। एक बात तो ये बताना, दूध और पानी का उदाहरण देकर के, जैसे गिलास में यद्यपि रखे हैं गेहूं भी और कंकड़ भी, गेहूं और चना दोनों मिले मिक्सचर एक गिलास में रखे हैं, तुम्हें तो गिलास में रखना अच्छा नहीं लगता हो तो कुछ और चीज में रख लो, लेकिन वास्तव में उन दोनों का क्षेत्र बिल्कुल अलग अलग है। आकाश के जिस प्रदेश में गेहूं का दाना है उस प्रदेश में चने का दाना नहीं है, तो वे इकट्ठे रखे गए अलग अलग, तो एक अपेक्षा कर देंगे इकट्ठे क्योंकि एक गिलास में रखे, लेकिन वास्तव में वे इकट्ठे हैं ही नहीं और उन दोनों के बीच में अमिल मिलाप है, उन्हें कभी भी कैसे भी अलग किया जा सकता है। तो तुम शरीर और आत्मा का संबंध, वर्णादि और आत्मा का संबंध कंकड़ और गेहूं, मतलब गेहूं और चने जैसा नहीं है, एक बात तो ये बताना चाहिए, बताना है, दूध पानी की तरह है। और दूसरा अर्थ ऐसा है कि वो उसे अलग किया ही नहीं जा सकता, जैसे ज्ञान और आत्मा, पुद्गल और रंग, ऐसा तादात्म्य संबंध भी नहीं है कि आसानी से गेहूं और चने के समान अलग नहीं किया जा सकता। और पानी अग्नि पर रखकर क्यों, और उसे दूध को पानी में से अलग किया जा सकता है, है ना। ये कहने का अर्थ ये है कि ना तो तादात्म्य संबंध है और संयोग संबंध तो है ही, लेकिन संयोग संबंध एक विंध्याचल और हिमाचल, विंध्याचल और हिमाचल पर्वत हैं जिनमें दोनों सैकड़ों मील की परस्पर दूरी है, है ना। फिर भी दोनों हिंदुस्तान में हैं तो हम कह सकते हैं एक ही देश में है। तो विंध्याचल और हिमाचल जैसे दूर नहीं है, ये बताना वो देश है कि दूध और पानी की तरह इनका संबंध है। एक क्षेत्रावगाह हो गए हैं और हम ऐसा नहीं कह सकते कि गिलास के भीतर जो आकाश है उस आकाश के किस प्रदेश में दूध है और किस प्रदेश में पानी, इस चने और गेहूं में कह सकते हैं ना, उसके प्रत्येक प्रदेश में दूध भी है और प्रत्येक प्रदेश में पानी है, तो ये मिलाप कुछ अलग टाइप का है कि नहीं, संयोग तो है लेकिन अलग टाइप का संयोग है, जन्म से लेकर मृत्यु तक का संयोग है, आसानी से इनको अलग नहीं किया जा सकता है, करना है तो मौत की कीमत पे होगा। आप समझे, मरोगे तो ये देह से इस आत्मा पृथक होगा, माने इतना आसान नहीं है लेकिन पृथक जाना जा सकता है। ऐसा क्यों है कि जाना जा सकता है और किया नहीं जा सकता है, तो इसमें भी बहुत मर्म की बात है कि करना तो उसमें हस्तक्षेप करना है और जानना तो प्योर तुम्हारी क्रिया है, तुम तो जानन क्रिया के कर्ता बने और उन्हें अलग अलग करोगे तो उनके कर्ता बनोगे। अंतर समझ में आया कि नहीं आया कि हम जान सकते हैं तो कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। इस जानना तो आत्मा की सेपरेट क्रिया है ना, उसे उसमें कुछ नहीं करना है, समझ गया ना, जानने के लिए, लेकिन उन्हें अलग अलग करना है तो उन्हें उनमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा जो संभव नहीं है, क्योंकि एक देव दूसरे देव का कर्ता नहीं है। ऐसा आता ना छड़ाना में वर्णादि अरुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया, न्यारा किया माने न्यारा जाना, बस तो किया की भाषा है तो नहीं नहीं चिंता मत करो, ये जगत नहीं मानेगा, ये साफ साफ किया लिखा और ये जाना कहते हैं, क्यों तुम हमारी नहीं मानोगे तो अध्यात्म तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, और झगड़ा करना हो तो तुम्हारे पास अच्छा हथियार है कि दौलत राम जी किया लिख गए, तुम्हें जीतोगे कि सब साफ किया लिखा है और ये जाना अर्थ करते हैं, कौन सी डिक्शनरी में किया का अर्थ जाना है, समझिए ना। लेकिन वो कहां किया, चौथे गुणस्थान में आज शरीर से आत्मा को भिन्न कहां किया, तो तेरहवें चौदहवें में भी नहीं किया, क्यों, तो वहां जाना ही अर्थ प्रकट सिद्ध होता है, इसलिए जाना ही अर्थ करना पड़ेगा, लेकिन वो नहीं मानेगा क्यों, क्रिया का जाना अर्थ तो किसी डिक्शनरी में होता नहीं है, अब उसे डिक्शनरी बताओ, निकाल के बताओ, शास्त्र में निकाल के बताओ, क्रमबद्ध कहां लिखी है, और क्रमबद्ध सब सही हो, सिर्फ करना वो नहीं निकाल के बता पाओगे तो वो झगड़ा कर लोग ना मैंने क्या समझते हैं अपने को। मेरे से ऐसे बहुत प्रश्न लोग करते हैं कि साहब ये आपने बात की कौन से शास्त्र में लिखी है, गोमठ सार में होगी, ठीक है तो कल निकाल के बताना, क्यों मैं क्यों बताऊंगा, मुझे तो पता पक्का भरोसा है, मुझे देखने का भी विकल्प नहीं है, तुम्हें विकल्प है ना, तो रात की नींद तुम खराब करो ना अपनी, मैं क्यों तुम्हारे लिए मैं क्यों करूंगा, मुझे और कोई काम नहीं है, मुझे बहुत काम है, मैं नियम साल लिख रहा हूं वो लिखूंगा ना, क्या अब आपको जवाब देना पड़ेगा, क्यों देना पड़ेगा, कर्जा लिया था तुम्हारे बाप से कुछ है? तुम घबराना नहीं है, ये बात तो मैं अपने पिताजी से भी कहता था, आपको जानकर आश्चर्य होगा, क्योंकि हमने उनको बहुत प्रेरणा दी कि आपने हमको जैन धर्म पढ़ाया और ये धर्म हमारे को मिल गया है, तो आप सारा काम बंद करके अब 24 घंटा स्वाध्याय में लगाओ, और उनने किया ऐसा। अब हम अशोकनगर में रहते थे तो साथ में हर साल एक परीक्षा भी देते थे, मैट्रिक इंटर बीए एमबीएससी प्राइवेट दी ना, तो अपनी पढ़ाई भी पढ़ते थे और अपना स्वाध्याय भी अपना करते थे, तो वो बस हम पढ़ रहे हैं, वो ही बगल में लेते हैं पलंग पे, और धीरे धीरे कोई कुछ भी एक ठोक दी बात तो हम उसका उत्तर दिया, फिर हमने पढ़ना शुरू किया, फिर 5 मिनट बाद फिर एक कुछ न कुछ प्रश्न उनके अपने दिमाग में से लगा दिया, अब हम पढ़ ही नहीं पाए, हमने कई दफे समझाया कि देखो हमें पढ़ना है, आप इकट्ठे लिख लो, इकट्ठे बता देना, हम इकट्ठे बता देंगे, ठीक है, अरे घर का पंडित बेटा पंडित, अब हमको तुम्हें रोकते हो, इतनी बात समझाते हो, इतने में तुम प्रश्न का जवाब दे सकते हो, अच्छा अच्छा देंगे जवाब, तो उन्होंने हमें जवाब देना शुरू किया, ये बात गोमर साहब में देखना, ये तत्वासूत के देखना, तत्वासूत के 6वें अध्याय में देखना, तुम्हें याद है ना, हाँ हमें याद है, तो तुम बता दो ना, हम देखने जाएंगे उस आईने, नहीं ये तो तकलीफ तुमको ही करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि अब भी हाल तुम एक में बता देंगे तो दूसरा प्रश्न ठोक दोगे, कम से कम तुम्हें 8 घंटा तो लगेगा खोजने में, तो 8 घंटा तो हम शांति से पढ़ लेंगे, क्यों समझ रहे, तुम्हें 8 घंटा खोजने में लगेगा ना, सूत्र जी निकालोगे फिर खोजोगे फिर 6वां अध्याय देखोगे, फिर तुम्हें नहीं मिले तो हमें बताना, तो हम निकाल के उसी वक्त बता देंगे, तो सचमुच ऐसा है कि सामने वाला ये समझता है कि जैसे सामने वाला तो खाली ही बैठा है और इसकी ये ड्यूटी है, न मालूम कहां से उसने हमारी ड्यूटी समझ ली कि उसके हर प्रश्न का जवाब देना हमारी ड्यूटी है, ये कहां से कौन से संविधान में से निकाली मेरी समझ में नहीं आता है? अभी भर भर बहस करेगा, जो आपसे बात बोलना है वो ये बहस करेगा, एक आदमी का मेरे पास कल फोन आया, मैं अपना काम नियम साल लिख रहा था, उसके बीच में फोन आया, मैंने कहा बात कर लो क्या नुकसान है, तो बात करे तो बोले साहब तीर्थ का क्या अर्थ है, तो मैंने ठीक है भाई ऐसा मेरा ये किताब है उसमें देख लेना, नहीं नहीं वो आप बता दीजिए मुझे, तो तीर्थ का मतलब, मैंने कहा तीर्थ के कई अर्थ होते हैं, तीर्थ माने आत्मा भी होता है, तीर्थ में मैंने सब होता है, रत्नत्र भी तीर्थ है, जनवाणी भी तीर्थ है, मंदिर भी तीर्थ है, ये और बोले चे सम्मेशकर वगैरह ये तीर्थ है, ये भी तीर्थ है, तीर्थंकर खड़े हुए वहां से पंच कल्याणक हुए उनके तीर्थ, इसका मतलब यह हुआ ये असली तीर्थ नहीं है, असली तीर्थ तुम्हारी वो आत्मा है वो तुम्हारा वो है, फिर इसका मतलब हम जन्मंदिर नहीं बनवाए, फिर कौन कह रहा है कि हम तुम जन्मंदिर मत बना, तीर्थ यात्रा करने नहीं जा रहे ना, कहीं नहीं तेरे से नहीं जा रहा, ऐसा जवाब देना पड़े, मैंने उस फोन को रख दिया। दूसरे घर आया, मैंने तो उठाया नहीं, धर्मेंद्र ने उठाया, तो उससे लड़ाई हो उनकी लड़ाई हो गई, वो धर्म ने समझाया भाई तुम किससे बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, बेकार की बातें करने से क्या मतलब है तुम्हें, तो मेरे समझ में आ गई कहां से अधिकार निकल गया ये हर एक आदमी का, है ना, कि वो हमसे चाय वक्त चलते वक्त उठते वक्त बैठते वक्त फोन पे यहां खाते वक्त पीते वक्त सब चाहे दबे कोई भी प्रश्न दागे और हमें उस सारे विद प्रूफ उसको जवाब देने चाहिए, ये न मालूम कहां से ये अधिकार उसको मिल गया है। अध्यात्म में तो ये नहीं चल सकता, आचार्य ने कह दिया कि ये व्यवहार न्याय का कथन है, क्यों अब कौन सा व्यवहार का है, तो निकालो ना तुम, नए चक्र पढ़ो कौन सा व्यवहार का है, ये बरनाली से गुणस्थान पर्यंत जो भाव है ये सब में कौन सा नए लगेगा, तो एक एक का अलग अलग निकालना पड़ेगा भाई साहब, क्योंकि बरनाली में ये रूमाल भी आ गया और बरनाली में अपना शरीर भी आ गया, तो बरनाली में रूमाल लेंगे तो उपचार दशभूत व्यवहार नहीं लगेगा और बरनाली में यदि शरीर लेंगे तो अनुपचार दशभूत व्यवहार नहीं लगेगा और राग लेंगे तो अशुद्ध निश्चय नहीं भी लग जाएगा और सद्भूत व्यवहार नहीं भी लग जाएगा, क्यों? फिर 29 की अलग अलग बात है, तो मैं आपसे कह रहा था कि इसमें सबसे बड़ी विशेषता यह है उन्होंने बरनादि लिख दिया। अब आदि में वे 29 हैं, जिसमें गुणस्थान और मांगना स्थान भी हैं और संयम लब्धि स्थान भी है, तो हम तो अकेले वर्ण पे माने पुद्गल पे घटित कर लेते हैं और उन्होंने इस 29 ही भावों को पुद्गल कह दिया आगे। अब लड़ो तुम कि पुद्गल कैसे कह दिया, गुणस्थान पुद्गल कैसे हो सकते हैं, पुद्गल में कई गुणस्थान होते हैं, गुणस्थान तो जीव के ही होते हैं, मोह योग भवा, मोह योग के निमित्त से जो आत्मा के परिणाम है वे गुणस्थान है, क्यों? अब तुमने पुद्गल कह दिया भाई। एक नीचे की कथा मैंने देखो, नये होन्ति तस्य ताणी उपयोग गुणाधिको जम्या, क्योंकि वो उपयोग गुण वाला जीव का लक्षण उपयोग गुण वाला है। अब जिसमें उपयोग नामक गुण नहीं है वो जीव नहीं है, समझ गया? ये जीव नहीं है की बात कहो ना, खुद कर रहे क्यों कि हमने दुनिया को दो भागों में बांटा है और एक भाग का नाम रखा है जीव और एक भाग का नाम रखा है पुद्गल। अब बोलो किस में रखे, और जीव की परिभाषा बनाई उपयोग, समझ में आ गया आपके? अब उपयोग जिस जिसमें है वो जीव और जिस जिसमें उपयोग नहीं है वो पुद्गल, ऐसी भी अपेक्षा जनवाणी में होती है। स्पर्श रस गंध वर्ण बनता ये परिभाषा हर जगह नहीं लगेगी, यदि आप ये नहीं स्वीकार करेंगे तो आपकी समझ में समय आसान नहीं आएगा। रखे ना क्या हमने सारे जगत में भेद विज्ञान का शास्त्र है ना, तो भेद विज्ञान में बस दो ही चीजों के बीच भेद होता है, तो है तो चीजें अनंत संसार में, अब उनको दो भागों में बांटना है तो एक भाग में रखा उपयोग लक्षण वाला जीव और एक भाग में रखा उसे हम अजीब नाम देवे, पुद्गल देवे, हम शरीर भी कह सकते हैं। कहा है शास्त्र में, बोलो कहाँ कहा? कई दफे सुनाया मैंने, देह जुदा आत्म जुदा यही तत्व को सार, और बाकी जो कछु और है याही को विस्तार है। क्या नहीं आया नहीं सुन? अब देह कह दिया ना, जीव बद्दो लिया, दोनों का जुदा जुदा माने भेद विज्ञान, तो अब इसमें गुणस्थान माने देह हो गया, मांगना स्थान माने देह हो गया है? अब तुम पूछते फिरना किसी से, लड़ते फिरना, नहीं नहीं आ, नहीं मानना हो तो नहीं मानना है? मेरा मतलब समझ गया कि नहीं? वो तो दो भागों में बांटेंगे और एक कोई भी नाम देंगे, अजीब नाम देंगे, पुद्गल नाम देंगे, उसे देह नाम देंगे, हैं ना? कुछ भी कह सकते हैं, पर कह देंगे और उसमें अनंत शुद्ध आचार्य उपाध्याय सबको खपा देंगे। अरे देह ने खपा दिया पंच परमेश्वर को, सिद्ध भगवान को, जिनके देह नहीं है, देह जुदा आत्म जुदा, तो सिद्ध भगवान जुदे हैं कि नहीं तेरे से, बोल। तो ये 29 प्रकार के भाव हैं, उन सबको यहाँ पुद्गल कहा है। देखो ये 68वीं गाथा है, देखो बहुत मार्मिक है, वो उन्होंने कम्मस दिया दे गुणस्थान अतेदना उत्ता, ऐसा लिखा क्या नहीं लिखा? कौन सी गाथा? देखो पढ़ो जरा। मोहन कम्मस्तु दया दुबन्या देज में गुणे ठाणा कहते हवंती दीवा मोहन करम के अब ये अचेतन ही कहे नित्य अब कहाँ अचेतन कहे चेतन माने जीव उपयोग लक्षण तो जीव से भिन्न माने अचेतन अब उन्हें अचेतन कह दिया अब गुणस्थान तेरा गुणस्थान क्या है एकदम कहें केवल ज्ञान से पूर्ण वितरागता अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख अनंत वीर अनंत चतुष्टय जहां प्रकट हो गए हैं वो तेरहवा गुणस्थान बोलेंगे कि नहीं और वो कहेंगे अचेतन है वो जड़ है वो पुद्गल है इसलिए मैं कहता हूं कि समय सार समझने के लिए बहुत चौड़ी छाती और बहुत ठंडा माथा चाहिए इसने तुमने हमेशा वक्ता का गला पकड़ने की कोशिश की तो न वो तुम्हें समझा सकता है और न तुम समझ सकते हो वो पात्रता ही नहीं है क्या होगा वो कितना ही महान वक्ता हो कितना ही शांत वक्ता हो लेकिन अंत में उसे हथियार डालने ही पड़ेंगे और आपके हाथ जोड़ने ही पड़ेंगे कि भैया मैं तुम्हें नहीं समझा सकता हूं नहीं तुम मुझे माफ कर दो बस क्यों मेरे जैसा आदमी थोड़ा आकर के कह देगा और कोई दूसरा ज्ञानी धर्मात्मा होगा तो वो हाथ जोड़ के कह देगा लेकिन रास्ता किसी के पास नहीं है क्योंकि बात जो है बताएगा तो आखिर वो ही ना तो मैं इसमें जो सबसे बड़ी बात है अपनी गाथा चल रही है कि इसमें वर्णाधिक को मैं गुणस्थान वगैरह ये सब चीजें आ गई जिनमें से ये 20 तो बिल्कुल पुद्गल हैं शरीर आदि और 9 जो हैं वो रागादि भाव हैं अकेले रागादि नहीं है तब 13वां गुणस्थान है तुम्हारा राग कहाँ है 14वां गुणस्थान है तुम्हारा राग कहाँ है मार्गणा स्थान है तो हर मार्गणा में अंत में गति मार्गणा में पंचम गति है कि नहीं इंद्रिय मार्गणा में इंद्रियातीत मार्गणा है कि नहीं है 14 मार्गणाओं में है ना एक ऐसा मेरे कहने का मतलब तो उन वो भी जीव नहीं है जीव चेतन है उस अपेक्षा भी अचेतन है जीव उपयोगमय है वे अनुपयोगमय है वे जड़ है ये असमय है ना ऐसा वर्णन इसमें बार बार आएगा तो वो कहते हैं इनका और दूध पानी का उदाहरण दे दिया अब दूध पानी का शरीर पे तो घट जाएगा लेकिन पुद्गल तो चना और गेहूं भी है ना और गुणस्थान भी है समझ रहे हैं ना तो वीतरागी सर्वज्ञ होने जाने पर भी वो गुणस्थान से नहीं छूटेगा पाला फिर वो गुणस्थान रहेगा वीतरागी हो गए और सर्वज्ञ हो गए तो भी 13वां गुणस्थान तो रहा कि नहीं रहा लेकिन उन्होंने एक मोटे तौर से एक उदाहरण दे दिया कि दूध पानी की तरह संबंध इनका जानना और उपयोगमय इस जीव के परमार्थ से है नहीं तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इनकी बारीकी में जाएंगे तो इतनी बहुत सी बातें आएंगी देखिए हम टीका पढ़ते हैं बहुत मार्मिक है इसमें टीका में सफेद रुई से बने हुए एवं कुसुम्बी रंग से रंगे हुए वस्त्र के लाल रंग रूप औपाधिक भावों की भांति पुद्गल के संयोग बस अनादिकाल से जिसकी बंध पर्याय प्रसिद्ध है ऐसे जीव के औपाधिक भावों का अवलंबन लेकर प्रवर्तित होता हुआ व्यवहार नए परादर्शित होने से दूसरे के भाव को दूसरे का कहता है कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जो व्यवहार नए की परिभाषा दी है तो एक द्रव्य के भाव को उसी का न कहकर अन्य द्रव्य के भाव का कहता है वो व्यवहार नए है और जो उसी के भाव को कहता है उसे यहां से लिए उन्होंने हम नए चक्र पढ़ते हैं ना तो वैसी परिभाषा कहीं नहीं मिलती है तो हम कहते हैं देखो टोड़ो गंजमल जी ने कहां से ले ली नए चक्र में तो ये है ही नहीं लेकिन ये यहां से ली है अब इसमें इन्होंने क्या कहा दो रुई ली एक सफेद रंग में कि रुई तो सफेद रंग की होती है ना तो सफेद रंग तो उसका ओरिजिनल है रुई का सफेद रंग क्या है ओरिजिनल रंग है ना सफेद रंग और अब लाल रंग में उसे रंगी तो लाल भी होगी। तो कहते हैं कि वर्ण जो है ना, वर्ण वो तो सफेद रूई की जगह हो गए और राग आदि हो गए ये लाल विमा की जगह हो गए, और लाल रूई राग आदि मय वर्ण आदि हो गए ना, समझ ना। रंग रंग का लिया उन्होंने राग आदि के लिए लाल रंग, और सफेद रूई ली वर्णादि के लिए। तो कहते हैं उनको औपाधिक भाव बंध पर्याप्त सिद्ध है, औपाधिक भाव है वो रागादि भाव। संयोग बस अनादि से जिसकी बंध पर्याप्त सिद्ध है, ऐसे जीव के औपाधिक भावों का अवलंबन लेकर प्रवर्तित होता हुआ व्यवहार नए, अपर कहते पर्यायाश्रित होने से दूसरे के भाव को दूसरे का कहता है। पर्यायाश्रित होने से क्या, देखो ये इसमें भी थोड़ी गहराई है। जब आप नए चक्र पढ़ेंगे तो द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नए अलग अलग हैं, और निश्चय और व्यवहार नए अलग अलग हैं, और वहां पर इस बात को स्पष्ट किया है। नए चक्र भी जो पढ़ते हैं क्लास में उन्हें पता होगा कि कुछ लोग कहते हैं पर्यायार्थिक नए माने व्यवहार नए, और द्रव्यार्थिक नए माने निश्चय नए, लेकिन ऐसा नहीं है, वहां स्पष्ट किया है। पर्यायार्थिक नए भी निश्चय होता है, और कभी कभी द्रव्यार्थिक नए के भी भेद जो देखोगे आप वो भी व्यवहार होता है। तो वहां तो उनकी भिन्नता समझाई कि ऐसा नहीं है। अब यहां ऐसा कह रहे हैं कि पर्यायार्थिक नए के आश्रय होने से वो व्यवहार नए है। असलियत में अंतर ये है कि द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नए सिद्धांत के नए है ना, और निश्चय और व्यवहार ये अध्यात्म के नए है। अब ये प्रकरण है अध्यात्म का, तो अध्यात्म ने उस पर्याय को भी यहां पुद्गल कह दिया, अपनी पर्याय को पुद्गल कह दिया, क्योंकि त्रिकाली ध्रुव निकालना है ना, जो पर्व पर्याय से है, गुणस्थान आदि ये पर्याय तो है ना, राग आदि जीव की पर्याय है ना, और इनको पुद्गल में डालना है, तो इसलिए यहां पर उन्होंने पर्यायश्रित होने से उसे व्यवहार नए में डाला। और जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है वो परम शुद्ध निश्चय नए वाला वास्तव में, उसको उन्होंने निश्चय नए में लिया। तो वो कहते हैं दूसरे के भाव को दूसरे का कहता है। दूसरे के भाव का मतलब यह है कि भाव हैं तो जीव के, और इन्हें पुद्गल कहा जा रहा है, देखो, अथवा ये भाव हैं तो पुद्गल के वो कहते हैं, और इन्हें जीव कहते हैं व्यवहार नए से। तो उन्होंने कहा पुद्गल के क्यों हैं, तो उन्होंने लिख दिया मोहन कम्म सुधिया, पुद्गल कर्म के उदय से होते हैं, तो जिसके उदय से हो वे भाव उसके। तो एक न्याय हमने ये लगाया, तो जितने भी वर्णादि से रागादि भाव हैं वे सब पुद्गल कर्म के उदय उनमें निमित्त होता है, इसलिए उन सबको यहां पर पुद्गल कहा। शायद कल परसों के प्रवचन में ये बात आई थी, अभी आई हो जाए सुबह के टेप में आई हो उसमें, फिर मैं एक दफे बता देता हूं इस बात के लिए कि द्रव्य कर्म और भाव कर्म और नो कर्म। तो द्रव्य कर्म ज्ञान वर्णादि आठ है ना, उनमें अघातिया कर्म के उदय से जो संयोग मिलते हैं उनको नो कर्म बोलते हैं, और घातिया कर्म विशेषकर मोहिनी कर्म के उदय से जो विकारी भाव होते हैं उन्हें बोलते हैं भाव कर्म। तो ये रागादि में तो वो भाव कर्म लिए, और वर्णादि में नो कर्म लिए, और द्रव्य कर्म तो है ही, तो द्रव्य कर्म दोनों में द्रव्य कर्म के उदय से जो जो चीज हुई उन सबको उन्होंने, क्योंकि द्रव्य कर्म पुद्गल के हैं तो उन सबको भी उन्होंने पुद्गल कह दिया। ये न्याय है बस, खत्म, ध्यान है ना, क्योंकि वो भी उसमें भी द्रव्य कर्म का निमित्त है और इसमें भी द्रव्य कर्म निमित्त है, तो कहते ये भी जैसे पुद्गल हैं वो भी पुद्गल हैं, और उनको हमने पुद्गल कह दिया क्योंकि ये द्रव्य कर्म पौद्गलिक है। तो 29 प्रकार के भाव वे आत्मा नहीं है, वे पुद्गल हैं क्योंकि उनमें उपयोग नामक गुण नहीं है। गुरुदेव तो आगे ऐसा ऐसा भी कहेंगे कि हमारे उपयोग प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है इसलिए हमने उसको कह दिया नहीं। फिर केवल ज्ञान तो पदार्थ और अपनी है ना, उसमें तो कोई कर्म का उदय निमित्त नहीं है ना, क्यों फिर अब फिर क्या करोगे? तो उन्होंने कह दिया भैया केवल ज्ञान के आश्रय से सम्मा दर्शन प्रकट नहीं होता है, हमें तो जिसके आश्रय से सम्मा दर्शन प्रकट होगा हम तो उसे ही अपना कहेंगे, बाकी दूसरे को अपना नहीं कहेंगे।